जा पाते इन तरह, तो उनकी जो निमूल बदल अल्टरनेटिव उनकी किताबें चीज़ें हैं उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके चीज़ें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद। तो अभी जो साथी तशरीफ ला रहे हैं तो हम लोग कुछ बातें ऐसी नसीहत की पढ़ेंगे, कुछ चंद मिनट में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो एक गोल्ड कॉइन है, सोने का सिक्का, जिसमें हम हमेशा के लिए लाखों नेकियां कमा सकते हैं, मिलियन बिलियन एवरी डे नेकियों के पहाड़। तो यहाँ पर जो है इस हलके में जो लोग मसरूफ हजरात हैं, कहा जाता है कि जो लोग नरम नरम बिस्तर पे अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला दर्जात को पहुँचा देते हैं। तो उलमा ने लिखा कि बादशाहों को और अमीर लोगों को जिक्र से मना नहीं करना चाहिए, हो सकता है उनको इससे फ़ायदा हो जाए। तो भाई हम क्या बोलें, क्या सोचें, क्या काम करें कि मुझको सवाब ज़्यादा मिले। ये मालूम है हम कमज़ोर हैं, वक्त ज़्यादा नहीं है, हर लम्हा जो है वो हमारा इम्तहान है। अल्लाह सुबहानहू व तआला जो हमारे महबूब हैं, खालिक़े कायनात, हमारी तरफ मुतवज्जह हैं, वो इतने एहसानात करने वाले हैं कि कभी उनके एहसान ख़त्म नहीं होते, और ऐसी बादशाहत वाले हैं जिनकी बादशाहत कभी ख़त्म नहीं होती, उनकी इतनी नेमतें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, और हमारी हर बात को देखते हैं और हर हरकत को जानते हैं, हर दुआ को सुनते हैं और हमारे फ़ायदे को हमारे से ज़्यादा समझते हैं। अल्लाह सुबहान व तआला कैसे जो है अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम इसके लिए जो है यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। तो मोहतरम माँ और बहनों, मोहतरम भाइयों, मुक़दस बुज़ुर्ग उम्मत की माएँ, अल्लाह सुबहानहू व तआला आपको बेहतरीन इल्म और आमल सालेह की तौफीक अता फरमाए, और दीन की बात सुनने का जो शौक़ आपके दिल में है उसको कबूल फरमा के हम सब के लिए दुनिया आखरत की नजात का ज़रिया बनाए। जो वक्त आपने इस काम के लिए फारिग़ किया अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, आपके हर काम में बरकत अता फरमाए। जिन मशायख की यहाँ पर बातें बयान होंगी अल्लाह ताला उनके साथ हमारा हशर फरमाए, और अम्बिया, शुहदा, सालेहीन, सिद्दीकीन के साथ हमें जन्नत के दर्जात नसीब फरमाए, आमीन। तो मस्जिद मजलिस इल्म में जब हम इल्म सीखने के लिए, ये ईजी एंड सिंपल लर्निंग, बहुत सीधी सादा सा ये चीज़ है, लेकिन ऐसी चीज़ है जो हमारे रोज़ के फ़ायदे की बात है। हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमें याद करेंगे। एक फ़ायदा यह है कि जो आदमी घर से निकलता है कि मैं कोई ऐसी बात सीख लूँ कि मुझे अल्लाह के यहाँ फ़ायदा हो, कोई दीन का इल्म सीख लूँ, तो फरिश्ते उसके रास्ते में पर बिछाते हैं और मखलूक दुआ करती है। मुख्तलिफ हदीसें हैं, फरिश्तों की एक जमात अल्लाह के जिक्र की हलके की तलाश में रहती है। इल्म का एक बाब, एक चैप्टर सीख लेना 1000 रिकत नफिल पढ़ने से अफजल है। 1000 रिकत नफिल पढ़ने में पूरी रात लगती है, 1 घंटा निकाल के आदमी को इल्म की, दीन की बातें सीख ले। जिस जगह अल्लाह का जिक्र होता है वो जगह आसमान में ऐसी चमकती है जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। और जो लोग अल्लाह के वास्ते एक जगह जमा हुए और अल्लाह के वास्ते वापस गए, कोई और दुनिया की गर्ज नहीं थी, तो ऐसे लोग जो है क़्यामत में अर्श के साए में होंगे, नूर के मिंबरों पर होंगे, इसकी जो है मुख्तलिफ रवायतें हैं। हमारा थोड़ी देर को मिल बैठना, अल्लाह सुबहान व तआला हमें ये सारी बरकत नसीब फरमाए। बात ये कि अमल तो 5 मिनट ही होगा, लेकिन उसकी तैयारी इतनी और उसकी नीयतें इतनी, तो अल्लाह सुबहान तआला जो है हमारे यानी चेहरों को और हमारे पोजीशंस को नहीं देखते, अल्लाह देखते हैं कि दिल में क्या बात है, उसके मुताबिक फ़ैसला फरमाते हैं। तो ये सारा जो है यानी इसलिए इन्नमल अमालु बिन्नियात, मशायख फरमाते हैं कि एक तहाई जो है नॉलेज वो इसी हदीस में है, और बात कहते हैं कि आधा नॉलेज जो है 50% वो इसी हदीस में है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो सारी ज़िंदगी जो है मेहनत है दीन अपने दिल के ऊपर। अब हमारी नीयतें क्या हैं यहाँ बैठने की, वो ये है कि उम्मत के हर भाई और बहन से अल्लाह राज़ी हो जाए और हम अल्लाह के दोस्त बन जाएँ, हमारी कामिल तौबा हो जाए, शैतान और नफ्स के बहकाने से बच जाएँ और गुनाहों से बच जाएँ, हमारी गफलत दूर हो जाए, हमें दुआ, ज़िक्र, अच्छी नीयतें हमारी दिल में आ जाएँ, हम सुन्नत तरीक़े सीख लें, सिर्फ इबादत नहीं बल्कि मामलात, माशरत, अखलाक सब आइडियल हो जाए, हमारी ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम पर हो जाए, हमारा नफ्स जो है वो मुतमईना हो जाए, अल्लाह की बातें हमारी सेकंड नेचर बन जाए, जैसा अल्लाह चाहते हैं वैसी वैसी हम करें, नेकी फैलाने का जज्बा, सारी उम्मत की खैरख्वाही हो हमारे दिल में, और हमारी दुनिया हयात तय्यबा हो, उसमें हमें सेहत, सलामती, अमन, चैन, उम्दा रिस्क, आसान आमदनी, यानी ज़्यादा कारोबार, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा घर बार, ये भी हमें चाहिए, ये भी एक दीन का हिस्सा है, दुआओं की कबूलियत हो, हमारी आखरत में आसान हिसाब हो, मग़फ़िरत हो, और जन्नतुल फ़िरदौस में हमें दर्जात मिले। ये सारी नियतें लेकर एक आदमी कुछ वक्त दीन सीखने के लिए निकला कि अच्छा अब जो है हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, कहाँ से मैं शुरू करूँ। तो भाई अल्लाह सुबहान व तआला के एहसानात याद करे आदमी, अल्लाह से मोहब्बत, और पहला सबक जो है वो ये कि हम अपने खालिक को पहचान ले जहाँ से हो रहा है। दुनिया के बादशाह जो है वो अपने खजाने के मोहताज होते हैं, वो जमा करते हैं कि उनकी और बाद वाले उनके लोगों के काम आए। दुनिया के बादशाह अपने खजानों के मोहताज होते हैं। अल्लाह सुबहान व तआला ऐसे बादशाह हैं कि लामहदूद खजाने हैं लेकिन किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, जिस पे चाहे बरसा दें, खजाने खोल दें, ले लो। जिंदगी, मौत, सेहत, बीमारी, गम, खुशी सब अल्लाह के कब्जे में है। जो आदमी अल्लाह से अपना ताल्लुक ठीक कर लेगा, अल्लाह सारी मखलूक से उसका ताल्लुक ठीक कर देंगे। इसकी हम लोग कुछ मिसालें पढ़ते हैं हर हल्के में बदल बदल के, ताकि हमें बात समझ में आए। भाई अल्लाह के एहसानात को याद कीजिए, ये जो है शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपने बुक किताब में लिखा है, उनका मजमून है कि एक रोटी पककर हमारे पास आने में कितनी मखलूकात हमारी खिदमत में लगी हैं। फरिश्ते जो बादलों को और हवाओं को चलाते हैं और बारिश बरसाने पर मुकर्रर हैं, आसमान और सूरज, फिर जो है खेत तैयार करने वाले मशीनें, आलात, जानवर, ट्रैक्टर, फिर फसल बोने वाले, उसमें एग्रीकल्चर का काम करने वाले, उसमें पानी देने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले, रातों को उसको काटने वाले, बोरियों में पैक करने वाले, वीट को काट के भूसा अलग करके बोरी में पैक किया, मार्केट में लाने वाले जानवर, ट्रैक्टर, ट्राली, बड़े बड़े ट्रेलर, आटा पीसने वाले, उसकी फ्लोर मिल्स होती हैं, फिर दुकान में सप्लाई वाले जो छोटे छोटे पैकेट लेके दुकान में लेकर जाते हैं, फिर जो है घर का सौदा लाने वाले और आखिर में पकाने वाले। तो फरमाते हैं अगर एक रोटी का एक टुकड़ा आने में सैकड़ों लोग पहले काम कर चुके हैं अल्लाह की मखलूकात, तो हमारे लिए क्या है कि बिस्मिल्लाह करके, अल्हम्दुलिल्लाह करके शुक्र से उसको खाए। तो अगर हम अल्लाह की एक नियमत और उसकी तफसील गिनने लगे तो कभी नहीं गिन सकते। इस तरह आदमी के बदन में अजायबात हैं, सर से पैर तक आदमी देखो परेशान रह जाए, मिलियन बिलियन यूनिट इतने सेल काम कर रहे हैं, इतने केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि हमें अल्लाह का शौक पैदा हो कि अल्लाह सुबहान तआला हमारे इतनी कदरदान हैं और इतनी चीज़ें हमें अता फरमा रखी हैं। तो उसके लिए जो है कुछ अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। तो फरमाते हैं कोई जो ये थोड़ा सा जिक्र कर लेगा तो उसको कई घंटे इबादत का सवाब मिल जाएगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही मिदाद कलिमातिही रिबा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही मिदाद कलिमातिही रिबा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही। यानी अल्लाह की पाकी इतनी उनने कलमात के बराबर, अर्श के वजन के बराबर, मखलूक़ात की तादाद के बराबर। तो जिनको ज़्यादा ज़्यादा वक्त नहीं मिलता तो चलते फिरते छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लें, फिर ऐसा इस्तग़फ़ार कर लें कि भाई सारे गुनाह सगीरा माफ़ हो गए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वातूब बोले, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वातूब बोले। उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार करें तो सारी उम्मत की तादाद के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। दरूद शरीफ पढ़ें तो उसमें दुनिया जहाँ की बरकत हैं उसमें, और बाज़ ऐसे दरूद शरीफ हैं कि उसको हज़ारों फरिश्ते उसको लिखते रहते हैं, जज़ाकल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। कुछ आदमी को हिफाजत की दुआएं, आदमी परेशान रहता है, फितने हैं, ट्रायल्स हैं, क्या किया जाए, बच्चों को कैसे हिफाजत की जाए, तो उसकी जो है दुआएँ सुबह शाम पढ़ कर दम किया जाए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। किसी को खतरात होते हैं दुश्मनों से, चीज़ों से, फितनों से, तो उसके लिए दुआएँ पढ़ी जाएँ। हसबुनल्लाह व नियमल वकील, आयत करीमा पढ़ी जाए, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो बात यह है कि अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर है, हमारे तलब की शौक की बात है। जितनी आजिज़ी बेबसी हम दिखाएंगे अल्लाह के यहाँ से उतनी बारिश होगी। इन्नमा सदक़ातु लिल्फ़ुक़रा, जितना हम रोने वाली शक्ल बनाएंगे उतना सदका दिया जाएगा, इसको और दो, इसको और दो। तो ये जो है ना अल्लाह के दरबार में जो है यानी आजिज़ी और न्याजमंदी चलती है, नाज गुरूर ये नहीं चलता, आजिज़ी चलती है। तो अल्लाह ताला हमें जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। तो भाई दीन में जो है हर किस्म की बातें बताई जाती हैं, बल्कि जो अभी पढ़ी जाएंगी रवायतें कि भाई हमें कैसे हमारी आमदनी बढ़ जाए और कैसे जो है हमें रिस्क आसान हो जाए कि हम जो है ये दुनिया जो दिन रात परेशान रहते हैं कि भाई कैसे जो है वो रोज़गार में तरक्की हो, तो उसके लिए भी चीज़ें दीन में बताई गई हैं, उनको भी अख्तियार किया जाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने घर में दाखिल होते वक्त सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ेगा उससे तंगदस्ती दूर हो जाएगी और खुशहाली आ जाएगी, यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों पर भी बहाएगा। यानी घर में दाखिल हुए आदाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, दुआ होती है उसके स्टिकर लगे होते हैं, वक्त मिला सूरह इखलास भी पढ़ लिया, दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया, सूरह फातिहा भी पढ़ लिया, दरवाजे में जितनी देर घंटी बजी और जितनी देर में जूते वूते रखे, एक मिनट में ये सब पढ़ ली मामूल, अंदर आते हुए बाहर जाते हुए, तो आप उसकी बरकत देखेंगे इंशाल्लाह। ये जो है दुर्रे मंसूर की रवायत है। अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ेगा, बहुत कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करेगा, अल्लाह ताला हर तंगी और परेशानी से नजात देगा, हर रंज व गम से छुटकारा देगा, और ऐसी जगह से रिस्क देगा जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं था यहाँ पे जॉब लगेगी, इतने पैसे यहाँ से आएंगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ा कर, ये टूल है सुभान अल्लाह। तो ये जो है अबू दाऊद की में से इसकी रवायत है। अद्दुआ, तो इस तरह के माशाल्लाह जो है ना किताबों में बुजुर्गों ने रिस्क के भी टूल जमा किए हैं, और उसका सबसे अच्छा टूल जो है वो तक्वा है, अल्लाह से डरना, फिर और टूल है बावजू रहना, और जो है सिला रहमी करना, रिश्तेदारों पे एहसान करना, जो अल्लाह ने दिया है दूसरों पे खर्च करना तो अल्लाह और देंगे सुभान अल्लाह। तो ये पूरी इसके छोटी छोटी जो है हर हफ्ते कुछ चीज़ें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। अच्छा भाई, जो लोग मसरूफ हैं उनके लिए नेकियों के पहाड़ मिनटों में, ऐसी कोई चीज़ हो जिससे बस बैठे बैठे जो है बहुत सवाब मिल जाया करे, शौक होता है, तो एक चीज़ जो है अमल वो मिसवाक इस्तेमाल करना है, कि अगर वजू करते हुए एक या आधा मिनट मिसवाक इस्तेमाल कर लें तो वो नमाज जो मिसवाक वाले वजू से पढ़ेंगे उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो रोज़ाना जो है 5 नमाज होती है मिसाल के तौर पे, फर्ज 5 नमाजें, मिसवाक के साथ कितना सवाब हुआ, 350 नमाजों का सवाब हो गया। एक महीने में वैसे तो 150 नमाजें होती हैं, मिसवाक के साथ 10,500 का सवाब हो गया। एक साल में वैसे तो 1,825 नमाजें होती हैं, मिसवाक के साथ 1,27,750 का सवाब हो गया। तो उन्होंने हिसाब लगाया, छोटी सी कैलकुलेशन है इसकी जो है, नहीं सही अहादीस है इसकी, कोई इतना सवाब मिलेगा। तो 20 साल में जहां एक आदमी को 36,37,000 36,37,000 नमाजों का सवाब मिलना था, अगर वो आधा मिनट मिसवाक कर लिया करे तो उसको 25,55,000 नमाजों का सवाब मिलता है, आधे मिनट की है कीमत 2.5 मिलियन टाइम। तो अल्लाह के यहाँ देने में कमी नहीं है, छोटे छोटे अमल है और आदमी अपना ले। ये जो है तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, अमर बिन शुआब रदी अल्लाह अन्हो अपने बाप से वो अपने दादा से नकल करते हैं, उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मर्द हो या औरत 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को सुबहान अल्लाह कहे, इतना आसान है सुबहान अल्लाह, वो उस शख्स की तरह है जिसने 100 नफिल हज किए सुभान अल्लाह। जो शख्स सुबह को 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहे, शाम को भी 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहे, वो उस शख्स की तरह है जिसने 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में सवारी के लिए दिए। जो शख्स सुबह को 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और शाम को भी कहे, तो उस शख्स की तरह है जिसने 100 गुलाम औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम से आज़ाद किए। जो शख्स सुबह को 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे, शाम को भी 100 मरतबा कहे, तो कोई उस दिन में उससे बढ़कर अमल नहीं ला सकता, मगर वो शख्स जो उसकी तरह कहे या उसके कहने पर जायद कहे। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। जितनी किताबें हैं हदीस की मशहूर, उनमें बाब होते हैं अबवाब जिक्र, तो वहाँ लेके एक चीज़ जिक्र के फ़ायदे बयान किए जाते हैं, तो उसमें से कोई एक मामूल बना के अपनी डायरी में लिख लिए, तस्बीह रख ली, फ़ोन में डाल लिया, चलते फिरते गाड़ी में लटका लिया, वो एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक ये सुभान अल्लाह की तस्बीह हो गई, तो वक्त जो है अलहदा से नहीं आएगा हमें, यानी मस्जिद मसल्ले पे बैठ के इतना टाइम नहीं मिलेगा, खाना पकाते हुए, आटा गूंदते हुए, सफाई करते हुए, जहाँ जिसको मौका मिल गया वो अपनी तस्बीहात और मामूलात पूरी करें। तो भाई जो है जिक्र का सवाब, जो सबसे जो बेहतरीन नमाज वो है जिसमें जिक्र ज़्यादा हो, पूछा गया सबसे बेहतरीन रोज़ा कौन सा है, जिसमें जिक्र ज़्यादा हो, बेहतरीन हज कौन सा है, जिसमें जिक्र ज़्यादा हो, बेहतरीन जो है वो दीन की मेहनत कौन सी है, वो जिसमें जिक्र ज़्यादा करने वाले हो। मालूम हुआ कि जिक्र करने वाले सारी भलाई ले उड़े जिक्र करने वाले, तो जहाँ पे भी हो जो कुछ हो सके उससे जो है यानी घरों में दीवारों में नूर आएगा, फिर वो जो है ना बच्चे इतने शरीफ पाकीज़ा और जो है दीन पे अमल करने वाले, वो फरिश्तों की आमद होगी, फरिश्ते बच्चों के साथ रहेंगे, यानी उसकी बरकतें जो है हमें दुनिया में नज़र आएंगी। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आपने दुआएं तो बहुत सी बता दी हैं और सारी याद नहीं रहती, कोई ऐसी मुख्तसर दुआ बता दीजिए जो सब दुआओं को शामिल हो जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ये तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत है, اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعاؤں کی کتابوں میں اکثر یہ لکھی ہوتی ہے، بہت ساروں کو یاد بھی ہوگی. ہمارا اپنا سبق ہے ہمیں اپنے سیکھنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے. اے اللہ، ہم آپ سے مانگتے ہیں وہ سب اچھی اچھی باتیں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور ان تمام بری باتوں کے شر سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے آپ کی. اور آپ ہی کی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور آپ کا کام حق پہنچا دینا ہے. اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی میں نیکی کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت. لا حول ولا قوت الا بالله. یہ ایک الگ تسبیح ہے، اس سے بھی آدمی کو جو ہے رنج و غم دور ہوتا ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، 99 غم کی دوا ہے، اور جو ہے بہت سارے چیزوں میں مجرب ہے. لا حول ولا قوت الا بالله. تو ان کو جو ہے معمول بنانا چاہیے. کثرت سے درود شریف پڑھیے. شیخ فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس میں آخرت میں شفاعت ہوگی، دنیا میں روزگار کی تنگی دور ہوگی، اور مال میں برکت ہوگی، دشمنوں پر غلبہ ہوگا، دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اور حاسدوں اور مکاروں سے حفاظت ہوگی. اور کیا چاہیے؟ دنیا آخرت کی بھلائی، مال میں معیشت میں اضافہ، اور جو ہے یعنی صدقے کے قائم مقام. پوری پوری کتابیں ہیں درود شریف کے فضائل پہ. سبحان اللہ. وہ دین کا سارا جو علم پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ساری زندگی انہوں نے کتنی تکلیف اٹھائی، اب ہمارے لیے جو ہے کہ ہم ان کا یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کو برکات دیجیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک درود شریف پڑھنے پہ 10 مرتبہ ہمارے اوپر رحمت بھیجتے ہیں. تو جو ہے اتنے جنی فضائل ہیں. اچھا بھائی، ایک جو ہے ہم لوگ نیتوں کا سبق پڑھتے ہیں کہ ہم کس طرح کوئی کام کریں تو بے خیالی میں، بے فکری میں نہیں کریں. کام تو ہم کرتے ہی ہیں، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، سب کام کرتے ہیں، لیکن ذہن حاضر کر کے اس پہ مجھے جو ہے ابھی لاکھوں کروڑوں کہاں کہاں سے ثواب مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہیں، اس چیز کو ہم کانشیس ہو جائیں. تو مثال کے طور پہ جب تلاوت قرآن کرنے بیٹھیں تو اس میں کتنی نیتیں ہو سکتی ہیں. قرآن شریف کو دیکھنا جو ہے وہ ایک الگ عبادت ہے، اس کو پکڑنا الگ عبادت ہے، پڑھنا الگ ہے. کان، زبان اور آنکھ اور ہاتھ، چار اعضاء اس میں مشغول ہیں، چاروں کو الگ ثواب مل رہا ہے. ایک ایک آیت یاد کرنے کا ثواب الگ ہے. ایک آیت یاد کرنے کا ثواب ایسا ہے کہ 100 رکعت نفل پڑھے، اور ایک ایک حرف پڑھنے کا ثواب الگ ہے. 10-10 نیکیاں ایک ایک حرف سے، اور باوضو اس سے زیادہ ملے گی، اور اس سے زیادہ ملے گی، نمازیں پڑھنے سے اور زیادہ ملے گی. یہ تو کم سے کم ہے. خاص صورتوں اور آیات کے فضائل الگ ہیں. 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اللہ 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، دن کے کام آسان ہو جائیں گے. یعنی آیتوں کے جو نا جن سے جنات سے حفاظت ہوگی، الگ الگ خواص ہیں. یہ سب ثواب مل رہے ہیں، اور الگ الگ وہ بھی ہیں کہ بھائی یہ آیت پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا. منزل کی آیات پڑھو. اللہ کی باتیں سننے اور سمجھنے کی نیت. ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس میں میرے لیے کیا سبق ہے. معنی سمجھ کر عمل کرنے کی نیت، یہ الگ ثواب ہے. یاد کر کے دوسروں کو سمجھانا، دعوت، تعلیم، بچوں کو سمجھانا، اس میں استعمال کرنے کی نیت. آیتوں کے ذریعے سے سبق پڑھایا جا رہا ہے. پھر جب قرآن پڑھا جائے گا تو فرشتے اور ملائکہ رحمت نازل ہوں گے، سکینہ حاصل ہوگی اس گھر پہ، اس جگہ پہ. تو اس کی نیت، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ملائکہ نازل ہوگی ماشاءاللہ، آنکھوں میں نورانیت پیدا ہوگی. اور قرآن حفظ کرنے، یاد رکھنے کی نیت. جب بھی کھولا کہیں سے پڑھ رہے ہیں، حفظ کرنے کی نیت کر لی. جو آدمی قرآن حفظ کرنے کی نیت کرے گا، تھوڑی تھوڑی سے پڑھے گا، ایک ایک آیت، دو دو تھوڑی صورتیں، اور نہیں کر پایا پورا، تو روایت میں ہے کہ فرشتہ قبر میں آ کے اس کو یاد کراتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت میں جب اٹھے گا تو اس کو پورا قرآن یاد ہوگا. تو دا نیم آف دا گیم از انٹینشن. دل میں کیا بات ہے، یعنی کوشش اور انٹینشن. رزلٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں، صرف بات ہو رہی کہ مجھ کو بھی چاہیے، یا اللہ مجھ کو بھی چاہیے. جو نیت کر لے گا اس کو مل جائے گا انشاءاللہ. ایک سبق ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے سنتوں کا. بھائی سنتوں میں راحت ہے. جو آدمی ایک سنت زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو سنتیں کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ جمعے کی نماز کی سنتیں. جمعے کی نماز، اب یہ مردوں کے لیے ہیں، زیادہ مسجدوں میں جاتے ہیں، خواتین گھروں میں پڑھ لیتی ہیں، ان کو وہاں ثواب مل جاتا ہے، اور مردوں کو جمعے میں تیار کر کے بھیجنے کا الگ سے ثواب گھروں میں بہنوں کو مل جاتا ہے. یعنی ثواب کسی کا گیا نہیں، لیکن یہ سنتیں جو ہیں انشاءاللہ، جمعے کی سنتیں. دیکھیں جمعے میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور جو ہے یعنی ایک دن میں 2 مہینے کی کمائی ہو جاتی ہے نیکیوں کی. اس لیے جو ہے جمعے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. پہلے زمانے میں لوگ جمعے کی نماز کے لیے سویرے سے چل پڑتے تھے، صبح 9-10 بجے سے بھی جامع مسجد جا رہے ہیں، وہ پیدل جا رہے ہیں، کہاں سے پہنچ رہے ہیں. ایک حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی پیدل جائے اور اس کو جمعے کے دن ہر قدم پہ 1 سال کی نماز और 1 साल के रोजे का सवाब मिलता है। तो उसमें लिखा हुआ था मस्जिद में कि सहा में इतनी फजीलत की हदीस और किसी काम के बारे में नहीं पाई। तो आप देखेंगे बाज ब्रादरान हैं और कहीं पर आपको मुलाकात शायद नहीं हो, लेकिन इस काम के इतने पक्के हैं, आप जब जाएं पहली सफ़े जुमे को बैठे होते हैं, आपको नहीं बैठने कहीं से मालूम तो है किसी एक चीज़ पे अमल हो रहा है, सुभान अल्लाह सारा सवाब लूट के ले गए। जुमे के दिन कुछ नहीं तो करीब जाके बैठे में पहले से आए हैं, जो सबसे पहले आए सबसे उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा। फरिश्ते बाहर खड़े रहते हैं, नाम लिखते रहते हैं, जो आएगा भाई ये आया ये आया ये आया, आखिर में इमाम आ गया खुतबा शुरू हुआ वो रजिस्टर बंद करके बैठ जाते हैं। अब बाद में जो आया चलो नमाज तो हो गई, लेकिन भाई पहले थोड़ा सा आना था, तो थोड़ा सवेरे करके आदमी जुमेरात को ज़्यादा काम कर ले, सवेरे चला जाए दफ्तर, थोड़ा सवेरे आ जाए, गुसल जो है चलो जुमे की सुबह कर लिया, रात को जुमेरात की रात से ही फारिग हो गया कि सफाई वगैरह करके कि भाई कल जो है ज़रा सा शेड्यूल टाइट है लेकिन मस्जिद में जल्दी पहुँचना है, तो उसके लिए कोशिश करें इंशाल्लाह। जुमे के दिन गुसल करना सुन्नत है, अच्छे साफ कपड़े पहनना सुन्नत है, मस्जिद में जल्द जाने की फिक्र करना, मस्जिद पैदल जाना यानी जब करीब हो, इमाम के करीब बैठना, सफ़ें भरी हुई हैं तो लोगों की गर्दनें ना फलांगना, कोई फजूल काम ना करना, खुतबे को गौर से सुनना। जुमे के दिन जो सूरह कहफ पढ़ेगा उसके लिए आर्श के नीचे आसमान के बराबर एक नूर जाहिर होगा जो क़यामत के अंधेरे में उसके काम आएगा, और जुमे से पहले तमाम जो है सगीरा गुनाह पिछले जुमे से इस जुमे तक माफ़ हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो कि दरूद मेरे पास पेश किया जाता है। जुमे के दिन बालों में तेल लगाना, खुशबू या इत्र का इस्तेमाल करना ये भी सुन्नत है। और जुमे की शाम का अब तो जो है अब 6 महीने तक जो है ऐसा समर का ज़माना रहेगा, जुमे की शाम को आदमी घर आ जाता है तो उसमें दुआओं की कबूलियत का खास वक्त है। असर के बाद दरूद शरीफ पढ़े, दुआ पढ़े, दुनिया आखरत की भलाई मांगे, तो जुमे का दिन जो है जुमेरात की रात थोड़ा सा हिस्सा और जुमे के दिन का आखिरी हिस्सा आदमी जो है मुकर्रर कर दे, उसमें उम्मत के लिए दुआएं मांगे, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फितनों से बचाव के लिए, उस वक्त जो है अल्लाह से दिल खोल कर मांगे, तो वो जो है कबूलियत का वक्त होता है। और जुमे में जब इमाम आकर बैठता है तो उस वक्त भी जो है दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वह हर वक्त बावजू रहने के अलग फजाइल हैं और जो है उससे रिस्क बढ़ता है, और जो है हमारे जो भी हम जिक्र करेंगे दुआ करेंगे उसमें और कबूलियत नूरानियत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी वजू में रहें, वजू टूट गया फिर जाके वजू कर लिया जिसको तंगी ना हो। एक वाकया है जो शेख ज़ुल्फ़िकार साहब ने अपनी किताब में लिखा है बादब बानसीब। एक शेख थे बुज़ुर्ग ख्वाजा फजल अली शाह, तो उनको जो है उनके दस्तरखान पर लोग आते थे और वो मेहमानों को उनके यहाँ खिलाया जाता था खाना। तो उन्होंने फरमाया कि भाइयों ये रोटी जो है आपके पास जो आई है इसको लाने के लिए खेत में जो वीट उगाई गई तो गंदम के लिए खेत में बावजू हल चलाया गया है, ये जो रोटी आपके पास आई है, और फिर उसको बावजू काटा गया है और उसके भूसे को बावजू अलग किया गया है गंदम से, और गंदम को बावजू पीस के आटा बनाया गया है, और आटे को बावजू गोंधा गया है, घर में आटे को बावजू गोंधा गया है, उसकी रोटी बावजू बनाई गई है, फिर जो आदमी लाया आपके पास वो बावजू लाके आपके सामने रखा है, काश के आप इसको वजू के साथ खा लेते। बुजुर्गों के यहाँ तालीम देने के जो है अंदाज होते होंगे, काश आप भी यानी वजू करके बैठते और उसको खा लेते। वजू की जो है ये यानी इतनी जो है तमाम होता है बाज़ बुजुर्गान के यहाँ कि 6-6 महीने का काम जो है वो माशाल्लाह वजू के साथ हो रहा है। अल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छा अब जो है एक सबक जो है वो पढ़ा जाएगा ये मशायख की किताबों में से, जो है वो बच्चों की तरबियत के बारे में है, जो उससे पहले जो है इंशाल्लाह हम लोग ये दो कुछ इसमें और हदीसें पढ़ेंगे इस सूरह यासीन के फजाइल में और चीज़ें। अल्लाह अकबर। सूरह यासीन शरीफ पढ़ने से तमाम काम बन जाते हैं। अता बिन अबी रिबाह रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी सूरह यासीन पढ़े शुरू दिन में पूरी की जाएंगी उसकी तमाम हाजतें, जो सूरह यासीन पढ़ ले शुरू दिन में उसके उस दिन के काम आसान हो जाएंगे। दुआ करने से बला टलती है और नेकी करने से उम्र बढ़ती है। सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं हटाती कज़ा को मगर दुआ, और नहीं बढ़ाती उम्र को मगर नेकी। ये जो है तिर्मिज़ी शरीफ की है, यानी कोई चीज़ को टाल नहीं सकती मगर दुआ, और उम्र को कोई चीज़ बढ़ा नहीं सकती मगर ये कि नेकी नेकी करे उससे उम्र बढ़ जाएगी। बाज़ जो है सदक़ात और ऐसी नेक काम है जो माल से आदमी करे अपनी दौलत से, तो उससे अल्लाह का गुस्सा बुझता है और बुरी हालत पर मौत नहीं आती। तिर्मिजी शरीफ में अनस रदी अल्लाह से रवायत नकल की गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बुझाता है अल्लाह के गुस्से को और दफा करता है बुरी मौत को, यानी जिसमें खात्मा बुरा ना हो। तो जो है सदका करना चाहिए। अब सदक़े की बहुत ज़्यादा मकदार नहीं है, जिसको जितनी तौफीक हो। अरे घरों में जो है वो भी अगर एक एक डॉलर और कोई चवन्नी जमा करके जाओ बेटा ये मस्जिद में डालाओ, तो क्वांटिटी की उसमें बात नहीं है, यानी बात ये है कि कितने दिल से और रेगुलर कुछ ना कुछ सदका उसको आदमी करता रहे, रोज़ाना थोड़ा बहुत, यानी 1 डॉलर आधा डॉलर, कभी मौका हो गया कोई गरीब आ गया उसको दे दिया, कोई खैरात कर दी, कोई खाना पका के खिला दिया, किसी के दरूद पढ़ दिए, किसी के जो है दुआ कर दी, सदक़े का कोई ना कोई काम करना चाहिए, तो उससे अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे सदक़ात की। हाँ, इसमें हम लोग कुछ सबक पढ़ते हैं कि घर में जितने लोग हैं माशरत में, वालदैन, घर वाले, बच्चे, उन सब के क्या फ़ज़ाइल हैं, ताकि हमें ये पता हो कि हमारे घर में हीरे मोती जवाहरात हैं, ताकि हमारे घरों में से जो है लड़ाई झगड़े फसाद इधर उधर की चीज़ें ख़त्म हो और लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। तो इसकी किताबें हम हर हलके में इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं। तो एक चीज़ जो है वो है कि घर के ख़वातीन के फ़ज़ाइल। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ने फरमाती हैं, ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, कि बेहतरीन औरतें अनसार की औरतें हैं, कि वो दीन समझने में यानी अहकाम शरीयत सीखने में शर्म व हया को रुकावट नहीं बनने देती। बेहतरीन औरतें अनसार की औरतें हैं, क्योंकि वो जो है सवालात पूछती हैं आकर के और दीन ज़्यादा से ज़्यादा सीखती, किसी यानी शर्म की वजह से कोई इम्पोर्टेंट सवाल पूछने से नहीं रह जाती, बल्कि वो सवाल पूछ के दीन का इल्म हासिल कर लेती। तो जो है हमें जो घर में हैं हमारी बहनें, तो वो अपने घर के जो महरम हैं अपने शौहर बाप उनके ज़रिए से दीन की बातें मालूम करवाएं, उलमा कराम से, मुफ्ती साहबान से, बहिश्ती जेवर किताब होती है, हेवनली ऑर्नामेंट्स और इस तरह के जो है अब ऑनलाइन भी रिसोर्सेज होते हैं कि दीन की चीज़ें हम सीखें और मालूम करवाएं, वो इसका क्या है और इसी कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो जो है वो हमें बरकत होगी, यानी हमें दीन हमारी ज़िंदगी में आएगा। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसको नेक और दीनदार बीवी मिली तो अल्लाह ताला ने निस्फ दीन यानी 50% दीन के साथ उसकी मदद की, अब उसको चाहिए कि बकिया दीन अल्लाह के तकवा से हासिल करे। ये कंजुल उम्माल के रवायत है कि जिसको नेक दीनदार बीवी मिली, कितनी अल्लाह पाक तारीफ़ फरमा रहे हैं कि 50% दीन उसको मिल गया कि उसको वह दीन पर चलाएगी, और चाहिए उसको कि बकिया आधा दीन अल्लाह के तकवा से हासिल करे, आधा काम आसान हो। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया कि बेवा औरत और मिस्कीन की भलाई के लिए कोशिश करने वाला ऐसा है जैसा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला या दिन भर रोज़ा रखने वाला और रात भर तहज्जुद पढ़ने वाला। खानदान में कोई गरीब कोई खातून है, कोई शहर में है, पड़ोस में है, उनकी खबरगिरी करना, काम काज कर देना, ऐसा है कि गोया अल्लाह के रास्ते में आदमी है और दिन भर जो है नमाज रोज़ा रख रहा है और रात भर तहज्जुद पढ़ रहा है। तो माशरे में जो तबका या कोई चीज़ बज़ाहिर जो जितना कमज़ोर होता है, जैसे वालदैन जितनी बड़ी उम्र को पहुँच गया अब उतना सवाब होगा उनकी खिदमत करने का। बज़ाहिर हमारी मादी दुनिया में क्या होता है कि जो कोई कमाओ है या कोई ताकत ज़्यादा है या उसके पास माल ज़्यादा है तो उसको लोग ज़्यादा समझते हैं। दीन में है कि जो सबसे कमज़ोर है उसकी बरकत से सबको रिस्क मिलता है, जो सबसे कमज़ोर है उसकी दुआ ज़्यादा कबूल होती है, उसकी खिदमत करनी चाहिए। हत्ता कि क़यामत में बड़े बड़े यानी बादशाह और अमीर लाइन में लगे होंगे और एक फ़कीर की खुशामद कर रहे होंगे कि मैंने तुम्हें रोटी दी थी एक दिन, आज मुझे बचा लो, तो क़यामत में जो है फ़ायदे वाला कौन रहा? फ़कीर बखराज। तो उसकी अलग फ़ज़ाइल है, यानी हम जो है बज़ाहिर एक मादी दुनिया की एक हकीकत है और एक उधर जो मिलने वाला है उसकी एक हकीकत है, कमज़ोरों पे एहसान, कमज़ोरों पे सिला रहमी, कमज़ोरों की मदद करना। तो भाइयों और जो है बहनों, एक खातून की ज़िंदगी का बन जाना ऐसा है कि पूरी इंसानियत का बन जाना, फिर वो अपने माशरे मेहनत करेंगी और बच्चे की तरबियत जो है वो माँ की गोद में होती है। तो इसलिए जो है बहुत जो है अपने घर के फ़ज़ाइल को पहचाने, कैसे कैसे हीरे मोती जवाहरात अल्लाह ने अता फरमाए हैं उनकी कदर करें। और जो है इसी से मुतालिक जो है बच्चों की तरबियत के बारे में एक दो मजामीन पढ़े जाएंगे। अब ये बुज़ुर्गों के तजुर्बात हैं जो वो पूरी ज़िंदगी दीन की मेहनत करते हैं, सारी दुनिया में जाते हैं, लोग उनको शिकायतें लिखते हैं, लोग उनसे मशवरे करते हैं, हाफ सेंचुरी का काम होता है उनका ही, 50-60 साल का तजुर्बा, फिर वो कोई बुक्स कंपाइल करते हैं या कोई बयान देते हैं। तो हम लोग उनमें से इसलिए पढ़ते हैं बरकत के लिए कि भाई ये सारे तजुर्बे खुद करने से फायदा नहीं है, जो बुजुर्ग फरमा रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं, उनकी बातों से सीख लो। तो इसमें जो है एक चीज़ पढ़ी जाएगी, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, ये शेख ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकातहू उनका मजमून है और बहुत फ़ायदे का है। उन्होंने साउथ अफ्रीका में बयान किए थे तो उसको कंपाइल किए हैं। अब ये बुक्स ऐसी हैं कि हर एक घर में होनी चाहिए, उनको बाकायदा पढ़ना चाहिए। फरमाते हैं कि बच्चे की तरबियत के बारे में जब आप अल्लाह अल्लाह का लफ्ज़ बोलेंगी तो बच्चे भी अल्लाह का लफ्ज़ बोलेगा। तो उल्मा ने लिखा है कि हरकात यानी प्रोनाउंसिएशन जो ये होती हैं और फोनेटिक साइंस, वो तीन तरह के होते हैं, फतहा और कसरा और मम्मा यानी ज़ेर ज़बर पेश। उसमें सबसे आसान चीज़ बोलना जो है वो ज़बर है यानी कि फतहा, और वो जो है लफ्ज़ अल्लाह में है। तो फरमा रहे कि लफ्ज़ अल्लाह बोलना बच्चे के लिए बहुत आसान है, जो सबसे पहले छोटा सा बच्चा है जो उसको पहले अल्लाह बोलना सिखाइए। जो और जब बच्चे ने अल्लाह का नाम पुकारा तो माँ बाप के पिछले गुनाहों की मग़फ़रत हो जाएगी। बच्चा पैदा हुआ फैमिली में तो ये एक टूल हो गया मग़फ़रत का, एक और माशाल्लाह एक और जो है थ्रेड। तो बच्चे के पास कसरत से अल्लाह का नाम लिया जाए, उसको सुलाना पड़े तो उसको लोरी भी ऐसी दें जो प्यार वाली हो, नेकी वाली हो, बच्चे के ईमान मजबूत करने के लिए कोशिश करते रहें। बच्चा बड़ा हो गया और उसको कोई डराना पड़ा तो कभी भी कुत्ते बिल्ली से ना डराएं। शेख फरमाते हैं कुत्ते बिल्ली से ना डराएं, किसी जिन भूत से मत डराएं। जब कोई बात हो तो बच्चे के जहन में अल्लाह सुभान व तआला का तसव्वुर डालें कि बेटा अगर तुम ऐसा करोगे अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाएंगे। अब जब आप प्यार से समझाएंगी कि अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाएंगे तो बच्चा पूछेगा कि अल्लाह मियाँ कौन है। तो अब आप जो है उसको अल्लाह का तारुफ़ कराएं कि अल्लाह वो है जिसने आपको सब नेमतें दी, अल्लाह वो है जिसने आपको आँखें दी और कान दिए, जिसने आपको अक़ल दी, जिसने मुझे भी बनाया, जिसने आपको भी बनाया, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। जब अल्लाह की तारीफ़ करेंगे और उसके इनामात का जिक्र करेंगे तो बच्चे के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और जन्नत में जाने का शौक़ पैदा हो जाएगा। ताकि शेख लिखते हैं कि बच्चा पूछेगा कि अम्मा अब्बा हम जन्नत में कब जाएंगे, छोटा सा बच्चा है वो ये पूछेगा कि हम जन्नत में कब जाएंगे। सुभान अल्लाह। अगर बच्चों से गलती हो जाए, नुकसान हो जाए तो उनको प्यार से समझाएं। मिसाल के तौर पे शेख ने लिखा आपकी बेटी है उसको पानी पीना है, आप किसी काम में लगी हुई हैं, उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया और पानी निकालने की कोशिश की तो अंदर जो खाना पका हुआ था दावत के लिए वो खाना निकल के फर्श पर ज़ाया हो गया। तो अब जो है अब ये कॉमन चीज़ है, घर में ऐसा होता है दस्तरखान पे कुछ उलट दी क्या है। अब देखते ही गुस्से में आकर बेटी को डांटना ये अच्छी बात नहीं। अब बेटी को प्यार से कहें कि बेटी कोई बात नहीं, ये तो मुकद्दर में ऐसे ही था, अल्लाह ने ऐसे ही लिखा था, ये चीज़ नीचे गिरनी ही थी, कोई बात नहीं, आइंदा अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम आपको उठा के दे देंगे, आप हमें कह दिया करें, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये तो अल्लाह की तरफ से ऐसा ही होना था। जब आप ऐसा कहेंगी तो बेटी आगे से जवाब देगी कि अम्मी मैं आइंदा से एहतियात करूंगी, मैं गंदी बच्ची नहीं बनूंगी, मैं आपको ऐसी बातें बता दिया करूंगी। फिर बेटी आपसे पूछेगी कि अम्मी अगर अब्बू आएँ तो आप डांटेंगी तो नहीं, और अब्बू को पता चल गया कि मैंने ये नुकसान किया है तो मुझे मारेंगे तो नहीं। तो आप बच्ची को तसल्ली दें कि नहीं हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊँगी, यही कहूँगी कि गिर के ज़ाया हो गया, अब्बू को फ़ोन कर देते हैं कि आते हुए कुछ और खाने का बंदोबस्त करके ले आएँ कि मेहमानों के सामने रखा जा सके। शेख फरमा रहे हैं कि आप देखेंगे कि बच्ची आपको अपना निगहबान समझेगी, सर का साया समझेगी, वो समझेगी कि माँ मेरे आयबों को छुपाती है और मेरा साथ देती है। तो बच्चे हालांकि छोटे हैं लेकिन वो दलाल से बार बार समझाने से ज़्यादा समझ जाते हैं, उनको हमेशा के लिए फ़ायदा हो जाता है। इस तरह के असबाक लिखे हैं शेख ने, पूरी किताब है ये, हम लोग तो एक दो सफ़े पढ़ते हैं शौक़ दिलाने के लिए। यानी जिस घर में इस तरह की बात होगी, आम तौर से ऐसा होता है कि गुस्सा आ गया कोई चीज़ होगी जो कॉमन है हर जगह ऐसा हो जाता है, लेकिन शेख फरमा रहे हैं कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो बच्ची खुद कहेगी कि नहीं हम आइंदा आपसे पूछेंगे, कोई वैसी बात नहीं। तो माँ बाप को चाहिए कि औलाद को दीन सिखाएं कि बच्चे बड़े होकर माँ बाप के फरमाबरदार बने और अल्लाह के भी फरमाबरदार बने। एक बात ये जहन में हो कि जब दीनी शख्सियात का नाम आए, औलिया इकराम, अंबिया इकराम, मशायख, सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम, जब उनके नाम लिए जाएं तो आपको चाहिए कि बड़े अदब के साथ बच्चे के सामने नाम लें। जब जो है दीनी शख्सियतों का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाएगा तो बच्चे को ये मैसेज मिलेगा कि बेटा तुम भी ऐसा बनना। तो उसको जो है बच्चा भी दीनदार आलिम कारी बनने की कोशिश करेगा, नेक बनने की कोशिश करेगा, उसके पास इल्म का जखीरा आ जाएगा। अब होता यह है कि बच्चे स्कूल गए, उनको किसी ने मुर्गे की कहानी सुनाई, किसी ने बिल्ली की कहानी सुनाई, वो कह रहे हैं कि आप जो है बच्चे को जन्नत की कहानी भी सुनाएं, अल्लाह की बातें, और वो तो उसके दिल में दीन का शौक पैदा होगा। इस तरह के जो है कुछ असबाक हैं जो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और जिसको फुर्सत हो वो पूरी यानी किताब और इस तरह के मजामीन उसकी साइट्स होती हैं वो सुन के, और घरों में उसका चर्चा हो, बहुत फ़ायदा होगा। तो जो है बच्चे जो है फूल की तरह होते हैं। अब इसमें एक सबक पढ़ा जाएगा कि भाई वालिद को चाहिए कि वो जो है बच्चे बच्ची को लेके अपनी माँ के फजाइल बयान करे, बेटा आपकी अम्मा इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं। और अम्मा को चाहिए कि वो बच्चे को लेके वालिद के फजाइल बयान करे कि आपके अब्बा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। तो वो भी सबक पढ़ा जाए। और आज का सबक ये है कि भाई माँ का बेटी पर एहसान और बेटी की जिम्मेदारी। अब ये किताब है तरबियतुल बनात, लेकिन इस बेटों के लिए भी यही बात है। माँ ने आपको 9 महीने पेट में उठाए रखा, आपकी वजह से उनको तकलीफ पहुंची, उसके बावजूद वो आपको जान से ज्यादा प्यार करती हैं। ये जो है अब्बा समझा रहे हैं बच्चों को, वो अपनी जान से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखती हैं, हर आफत से महफूज रखती हैं। आप पर भी फर्ज है कि उनसे खूब मोहब्बत करो। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह लुकमान में कि हमने इंसान को जिसको उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है, तो हमने इंसान को ताकीद की है कि वालदेन के साथ अच्छा सलूक करे, और मेरा भी शुक्र अदा करे और वालदेन का भी, और मेरी ही तरफ तुमको लौट कर आना है। अभी जो है हजरत ने एक हदीस बयान की, हम लोग सुन रहे थे कि क़यामत में ऐसा होगा कि बाज लोग जो है वो जन्नत और दोजख के बीच में आराफ पे रोक लिए जाएंगे। वो एक रवाया, और वो बहुत हालांकि वो जो है दीन के रास्ते में शहीद हुए होंगे, इतना बड़ा दर्जा कि और कोई नफिल काम का और कोई काम का इतना ऊंचा सवाब नहीं है, शहीद हुए होंगे, लेकिन वालदैन की नाफरमानी की होगी, इसलिए वो जन्नत की जहन्नम में तो नहीं डाला गया कि शहादत का दर्जा था, लेकिन जन्नत में भी जाने से अभी रोक दिए गए कि वालदैन की नाफरमानी की थी, अभी एक फसील पर रुकावट पर रोक लिए गए कि पहले ये हिसाब दो। तो भाई वालदेन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, खाए कितना ही बड़े से बड़ा दीन का अमल आदमी कर ले, लेकिन वालदेन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। तो भाई देखो बेटी, अब ये जो है बेटी छोटे बच्चों से खिताब है, ज़रा सोचो तुम्हारी माँ कितनी तकलीफ़ों के बाद तुम्हें जन्म देती है, उसके बावजूद तुम्हारे देखते ही खुशी से सारी तकलीफ़ें भूल जाती है, अपनी जान से ज़्यादा तुम्हारी हिफाजत करती है, हर वक्त गोद में लिए रखती है, तुम्हारे बदन और कपड़ों को साफ़ सुथरा रखती है, तुम बार बार बिस्तर ख़राब करते हो फिर भी उसकी मोहब्बत में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आता, ख़राब जगह खुद आराम करती है, तुमको खुश्क और साफ जगह सुलाती है, लिहाजा तुमको बहुत ज़्यादा खिदमत और फरमाबरदारी करनी चाहिए और अपनी अम्मी को नाराज़ नहीं करना चाहिए। हर लम्हे उनका ध्यान तुम्हारी तरफ रहता है, तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करती हैं, तुम्हें नींद से उठाती हैं, हाथ मुँह साफ़ करती हैं, धोती हैं, बार बार साफ़ कपड़े पहनाती हैं, हर गंदगी से बचाती हैं, तुम्हारे लिए सुबह शाम का खाना तैयार करके रखती हैं, तुम्हारे सोने के लिए बिस्तर लगाती हैं, तुम्हें हर तरह से आराम का ख्याल रखती हैं। तुम पर भी वाजिब है कि उनकी ताज़ीम और तकरीम फरमा बरदारी करो। अगर तुम्हारी जब सेहत ख़राब होती है तो उनकी माँ की नींद उड़ जाती है, और तुम्हारी तकलीफ इतनी नहीं होती जितनी वो परेशान होती हैं, खुद आराम करने के लिए उनकी आँख भी बंद नहीं होती जब तक तुम्हें मुकम्मल शिफा ना हो जाए, उनका दिल गमजदा ही रहता है, तुम्हारी सेहत याबी पर उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है, दिल और दिमाग खुशी से भर जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं, तुम्हारे लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करती हैं। ये अफसोस का मकाम है कि बच्चों तुम अब भी उनका शुक्रिया अदा ना करो, और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सबसे पहली दरसगाह है, सबसे पहले तुम्हें बोलना बात करना उन्होंने सिखाया, अदब और अखलाक की तालीम दी, तो तुम्हारे ऊपर भी उनकी इताअत शारी फ़र्ज है। तो इस तरह आप तुम नेक बन जाओगे और बन जाओगी, और मुस्तकबिल में तुम्हारे बच्चे इस तरह फरमा बरदार होंगे और अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाएंगे। ये जो है इस तरह से यानी आसान उर्दू में या छोटे छोटे अल्फाज में बच्चों को एक दूसरे के फजाइल बयान कर, बेटा तुम्हारे अब्बा इतने अच्छे हैं, बेटो तुम्हारी अम्मा इतनी अच्छी हैं, तो बच्चा जो है हर एक के जो है वो खूब पहचानने लगेंगे, छोटी उम्र से ही जो है वो सआदतमंद हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें जो है तौफीक अता फरमाए कि हम जो है ये इन चीज़ों में दीन सीखने के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए भी उसमें मेहनत करें इंशाल्लाह। एक सबक इंशाल्लाह अगला सबक हमें पढ़ा जाएगा। जैसे कि अर्ज किया गया, सलीके का मकसद है कि मुख्तसर वक्त में 5-5, 10-10 मिनट कुछ ऐसे सबक पढ़ ली जाए सबके काम की हैं, कभी ना कभी फ़ायदा हो जाएगा। एक सबक यह है कि भाई जो लोग जो है हम बड़ी उम्र के हो गए और दुनिया से जाने का ख्याल हुआ कि भाई क्या होगा, अल्लाह के पास क्या मामला होगा, या लोग जो चले गए अच्छे मोमिन थे, ज़िंदगी नेक गुजरी, क्या उनका मुकाम है, अल्लाह के पास क्या मिला, तो उस पर भी बहुत सारी बशारतें आई हैं। पूरी किताबें लिखी गई हैं शौक वतन, और जो है किताब लिखी गई मरने के बाद क्या होगा मौलाना आशिक इलाही साहब ने, उसमें मुस्तनद उन्होंने रवायतें जमा की हैं कि मोमिन का अगर हम नेक काम करेंगे तो कितना इकराम होता है, कितना वेलकम होता है जब वो इस दुनिया से अगली दुनिया में जाता है। तो एक उसके बारे में कुछ सफ़े पढ़े जाएंगे इंशाल्लाह। हज़रत बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि एक दिन हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुंचे तो देखा कि अभी लहद नहीं बनाई गई, यानी कब्र तैयार की जा रही है, तो हम बादब बैठ गए, जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बादब बैठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे जमीन कुरेद रहे थे। फिर आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के आजाब से पनाह मांगो, 2 या 3 मरतबा यही फरमाया कि कब्र के आजाब से पनाह मांगो। फिर फरमाया कि बिलाशुबा जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं, उनके साथ जन्नत का कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इतने ज्यादा होते हैं जहां तक उन नजर पहुंचे वहां तक बैठ जाते हैं। कतार में जो है लोग जो आसपास हैं उनको नजर नहीं आता, लेकिन जो दुनिया से जा रहा है उसको नजर आ जाता है कि सारा इकराम की क्या हो रहा है। फिर जो है मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं हत्ता के उसके सर के पास बैठ जाते हैं, फरमाते हैं ऐ पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रजामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचा रूह इस तरह सहूलत से निकल आती है जैसे मशकीज़े में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है, जैसे किसी बर्तन में पानी है बहता हुआ बाहर आ जाए, कोई मशक्क़त नहीं हुई, नेक बंदे के साथ ऐसी ट्रीटमेंट है। बस जो है उसे मलकुल मौत ले लेते हैं, उनके हाथ में लेते हुए दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे हुए थे हैं पल भर भी उनके हाथ में ही छोड़ दे, हत्ता कि उसे लेकर कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं, रूह को लेकर, यानी उसका वेलकम होगा आसमानों में। खुशबू के मुतालिक इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो कभी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की पाई गई मिस्क की, इस जैसी वो खुशबू होती है, पूरे ज़मीन का बेहतरीन परफ्यूम उस वक्त उसको दिया जाता है। फरमाया कि रूह को लेके फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं, फरिश्तों की जिस जमात पर उनका जिक्र होता है वो पूछते हैं ये कौन पाकीज़ा रूह है, कौन सा काफिला जा रहा है, जैसे जो है दुनिया में जो है बहुत पहले से कोई गुजर रहा हो, सड़कें बंद हैं और लोग जा रहे हैं तो पूछें भाई कौन जा रहा है, तो पूछते हैं कौन पाकीज़ा रूह है और उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं, हजरत फलां 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 या जो है कोई खातून फलां फलां, जिससे दुनिया में बुलाया जाता था। इस तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं, चुनांचा दरवाज़ा खोल दिया जाता है, रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता के एक आसमान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के मुकर्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुखसत करते हैं, फरिश्ते छोड़ने जाते हैं अगले आसमान तक। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को किताब अलियीन में लिख दो, नेक वालों नेक लोगों के रजिस्टर में लिख दो और उसको ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने उसको ज़मीन ही से पैदा किया है, उसी में उसको लौटा दूंगा, उसी में से उसको दोबारा निकालूंगा। चुनांचा रूह जिस्म में वापस कर दी जाती है। उसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, ये ऐसा जब वो कब्र में दफन के बाद रूह वापस कर दी जाती है, 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर बैठाते हैं, सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं तेरा दीन क्या है, जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे पास भेजे गए, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहता है वो अल्लाह के रसूल हैं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है, वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया, उसकी तस्दीक की। फिर एक मुनादी यानी अनाउंसर ऐलान करने वाला आसमान से आवाज़ देता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, तो उसके लिए जन्नत के बिछौने जन्नत के बिस्तर बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। जन्नत के बिस्तर बिछा दो, जन्नत के कपड़े पहना दो, जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। चुनांचा जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दिया जाता है, जिसके जरिए जन्नत का आराम और खुशबू आती रहती है, उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है जहां तक उसकी नजर पहुंचे। इतना जो है नेक मोमिन का इकराम हो रहा है। उसके बाद निहायत खूबसूरत बेहतरीन लिबास वाला पाकीजा खुशबू वाला एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीजों की बशारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं तेरा अमल साले हूँ, मैं तेरा नेक अमल हूँ, गुड डीड, एक आदमी की शक्ल में आके। फिर उसके बाद वो जो है मैयत खुशी में कहता है कि ए अल्लाह क्यामत कायम फरमा, ए अल्लाह क्यामत कायम फरमा, ताकि मैं अपने अहलो अयाल और माल में पहुंच जाऊँ। खुश होता है। सुभान अल्लाह। एक रवायत में है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो आसमान और जमीन के दरमियान का हर फरिश्ता और वो सब फरिश्ते जो आसमान में हैं सब के सब उस पर रहमत भेजते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हर दरवाजे वाले फरिश्ते दुआ करते हैं कि इसकी रूह को हमारी तरफ से लेके चढ़ाया जाए। सुभान अल्लाह। तो भाई ये जो है और उनके लिए जो नेक अमल करें कितना जो है उनके लिए वो इनाम है। जाबिर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन को कब्र में दाखिल किया जाता है तो उसको ऐसा मालूम होता है जैसे सूरज डूबने वाला हो। जब उसकी रूह लौटाई जाती है तो आंखें मलता हुआ उठ बैठता है और फरिश्तों से कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं नमाज पढ़ता हूँ। उसको ऐसा लगेगा कि असर की नमाज का, जैसे आप दोपहर में कैलूला करके देर तक लेट गए, हड़बड़ा के उठे कि सूरज डूब रहा है, असर पढ़नी है, अब कोई घर में बात है, जल्दी मुझे असर पढ़नी है। उसको उस वक्त ऐसा ही जो है ख्याल होगा कि भाई मैं तो कहाँ हूँ, मैं, मुझे असर पढ़नी है। तो इतना जो है जो नमाजी होंगे दीन का ख्याल करने वाले उनको इतना इनाम मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो भाई ये जो है दिन ये चूंकि आना सबके साथ है, ये ऐसी चीज है कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो जो लोग हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए, जो हमारे आबा और दादा, उनके बारे में तो बहुत अच्छा गुमान रखना चाहिए कि इंशाल्लाह ऐसा ही उनके साथ हुआ होगा। और अपने बारे में भी अल्लाह से मांगना कि अल्लाह मैं कैसे कैसे अमल करूँ कि मुझे भी ऐसा ज़बरदस्त वो मिले। और जो कोई बहुत यानी बीमार हैं या कमज़ोर हैं, बड़ी उम्र के हैं, तो उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाना, अच्छी अच्छी बातें सुनाना। और जो है दूसरे यानी लोगों के लिए भी रहमदिली चीज़ें यानी शफ़क़त का बर्ताव कि या अल्लाह सारे आलम पर मेहरबानी फरमा दीजिए और उनको जो हिदायत दे दीजिए ताकि दुनिया से खात्मा हो तो ईमान के साथ हो और उनको इतना वेलकम मिले। तो उसको जो है उम्मत की खैरख्वाही का जज्बा। अब ये तो मौत के वक्त का है, आगे जो है जो नेक अमल किए होंगे तो उनको क्या मिलेगा, जन्नत में जाके क्या मिलेगा। कुछ जो है वो ये चीज़ें सिर्फ नमूने के तौर पे दो चार बातें हम लोग सुनते रहते हैं मस्जिदों में शौक़ के लिए, जो कि उसका इस मामले से ताल्लुक़ है। जन्नत में जो है सोने चांदी के महलात मिलेंगे, दूध और शहद की नहरें होंगी। जन्नत का एक दरख्त इतना बड़ा है कि उसका साया, उसका शेड 100 साल में आदमी दौड़ता रहेगा घोड़े पर बैठकर, तो 100 साल में एक दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। एक मोती जो है वो 60 मील ऊंचा, उसको काट कर उसके अंदर खेमा बनाया जाएगा, टेंट, उसमें जो है जन्नती रहेगा। दुनिया का जो मोती है वो ज्यादा 1 इंच का होगा और आधे इंच का इससे ज्यादा क्या होगा, 60 miles हाई इन द स्काई, 60 मील ऊंचा मोती किसी ने कभी देखा नहीं। उसको काट करके उसके अंदर ही नहीं, अलग से ईंटें लाने की जरूरत नहीं है, उस मोती को काट के उसके अंदर टेंट बनाया गया, उसके अंदर आप रहें, इतने ऊंचा, 60 मील ऊंचा। जन्नत के फल दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठे, मक्खन से ज़्यादा नरम। जन्नती औरत का दुपट्टा यानी जो ख़वातीन जो बहनें पर्दे के साथ दुनिया में रहती हैं, तो उनको क़यामत में ऐसा पर्दा, ऐसा दुपट्टा अता किया जाएगा कि जो दुनिया और उसमें जो कुछ है उससे बेहतर है। पूरे दुनिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जितनी ट्रिलियंस की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा कॉस्टली दुपट्टा एक जन्नती खातून को दिया जाए। ये हकीकत। सबसे जो कम दर्जे का आदमी होगा दुनिया में, जो मोमिन, जो ईमान वाला, जिसको जन्नत मिलने का फैसला हो गया, तो उसको पूरी दुनिया से 10 गुना ज़्यादा जन्नत मिलेगी। हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा सेहतमंद रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे। ये 3 चीज़ें दुनिया में किसी को नहीं मिली, बादशाहों को भी नसीब नहीं हुई, हज़ारों साल से किसी आदमी को नसीब नहीं हुई, ना हो सकती है, कि हमेशा खुश रहे, कभी परेशान नहीं हो, हमेशा सेहतमंद हो, कभी बीमार नहीं हो, हमेशा जवान हो, कभी बूढ़ा नहीं हो। ये चीज़ जो है वो सिर्फ जन्नत में हर अदना छोटे से छोटे जन्नती मर्द औरत को मिल जाएगी। हज़ारों साल बागों में तफरी है, महल्लात में आयश है, न किराया है, न लीज है, न फीस है, न टैक्स है, न धुआं है, न बदबू है, न कोई यानी पकाने की मेहनत है धुएं बदबू की, जितना चाहिए खाइए पीजिए, बाथरूम भी जाने की ज़रूरत नहीं जन्नत में। जन्नत के मनाजिर जो है, ये ऐसे ऐसे शौक, और वो जन्नत जो है वो बाद में बनाई नहीं जाएगी, कोई इमेजिनरी चीज है, कोई साइंस फिक्शन है, अभी भी मौजूद है। ऐसा उलमा फरमाते हैं कि आदमी समझे कि हम गोया एक दो मंजिला इमारत में रहते हैं, एक मंजिल में हमें दुनिया में है, यहाँ अमल कर रहे हैं, यहाँ टेस्ट है, एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ पर अच्छाई बुराई हर तरह की चीजें हैं, और एक छत है, इसके ऊपर जन्नत है, बस जरा सा ही फासला है। तो उससे क्या होगा, हर वक्त आदमी को ध्यान रहेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, उधर एक रिवॉर्ड ऐसा तैयार है, अगर मैंने अच्छा काम किया तो उधर मुझे बड़े बड़ी चीजें मिलेंगी। तो बच्चों को भी इसका शौक दिलाना चाहिए, इस तरह के मजामीन, इस तरह की चीजें पढ़ी जाती हैं। अब यह है कि भाई हम किस तरह के काम करें कि हम जो है सिराते मुस्तकीम पर आ जाएं और अल्लाह हमसे राजी हो जाए और जन्नत में जाना आसान हो जाए, क्योंकि आज की दुनिया में हम रहते हैं ये इसमें फितन है, शैतान और नफ्स साथ लगा हुआ है। शैतान ने जो है वो जो है वादा किया हुआ है हजारों साल से कि मैं हर एक को गुमराह करूंगा, उसको हटाऊंगा सिराते मुस्तकीम से, जो सुबह शाम जो है वो लगा हुआ है। हमारा अपना नफ्स जो है हमें बुराई पे ले जाता है। तो मशायख फरमाते हैं कि भाई इसमें सबसे अच्छा है कि आदमी बड़े बुजुर्गों मशायख से राबता रखे और आदमी जो है अपनी इसलाह कराता रहे, और जिसको ये मैसर नहीं हो उसको खुद ही अपनी इसलाह करनी है, अपने रोजाना का हिसाब किताब, तो उसके लिए भी एक तरीका हमारे मशायख ने तजवीज़ किया है, जो ये ओरिजिनली जो है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से आया है, फिर उसके बाद हजरात ने उसमें इजाफा किया है, हजरत डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उसका जो है हमारे तक पहुंचा हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहू, उन्होंने जो है बयान किया। तो ये सबके फायदे के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। फरमाते हैं कि सुबह सुबह, ये बहुत अहम बात है, फरमाते हैं कि आदमी की इसलाह का ये नुस्खाए अक्सीर है, यानी इसमें जो है जो अमल कर लेगा बस वो स्ट्रेट पाथ पे आ गया। फरमाते हैं कि सुबह सुबह अपने नफ्स से एक मुआहदा कर लो, एक एग्रीमेंट कर लो, सुबह वक्त नहीं मिले तो रात को कर लो कि भाई आज मैं सारे काम अल्लाह के लिए करूंगा और मैं नाफरमानी नहीं करूंगा, मेरे जिम्मे जो फराइज हैं या दूसरों के हुकूक हैं सब चीज़ें अदा करूंगा, और ए नफ्स अगर तूने नाफरमानी की तो मैं तुझे सजा दूंगा। एग्रीमेंट हो गया, देखो अगर कोई गड़बड़ की तुमने दिन में तो मैं शाम को वापस आके तुम्हें सजा दूंगा। आदमी के अंदर नफ्स है, उसको बुरी चीज़ों में उकसाता रहता है। अब ना मुआहदा करने के बाद फरमाते हैं कि दुआ करो, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं माहदा तो कर लिया, नियत तो है, लेकिन ज़माने में इतने इतने फसाद और इतने फितन है, जहाँ मैं निकलूँ ना आँखों को पना है, ना जबान को पना है, ना खाने का वो है, तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कहीं फंस ना जाऊँ, मेरी मदद फरमाइए। लाहौल वाला खुद अल्लाह बिल्ला, खूब अल्लाह से मांग के रो गुड़गुड़ा के निकला कि मैंने माहदा तो किया है और अल्लाह आप ही मुझे जो है बचा सकते हैं। तो अब जो है दिन में जितने काम पेश आए, घर में है, बाहर है, दफ्तर में है, बाजार में है, कहीं कोई सोशल किसी जगह पर है, तो हर काम से पहले सोचना एक मिनट ज़रा रुक गए कि भाई ये कहीं वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, कहीं जो है मेरी आँख जबान गलत तो नहीं बहक रही, और ये ठीक काम है कि नहीं, अल्लाह के नज़दीक मकबूल है कि नहीं। आम तौर से ऐसा होता है कि मालूम सबको होता है कि ये काम ठीक है कि नहीं, लेकिन जो है वो शैतान नफ्स किसी तरह से ऊंच नीच करा देता है। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर मालूम ना हो कि भाई ये खाना ठीक है नहीं, हलाल है कि नहीं, फूड इंग्रेडिएंट ठीक है नहीं, तो भाई उलमा मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, पूछ ले किसी से, मालूम कर ले। लेकिन आम तौर से क्या है कि मालूम सबको होता है लेकिन अमल के वक्त में गड़बड़ हो जाती है। तो हजरत फरमाते हैं कि ऐसा समझो कि तकवा का मीटर दिल में लगा हुआ है, बताता रहता है कि इस हद से आगे बढ़े तो गुनाह होगा और जहन्नम की सज़ा होगी, रेड फ्लैग, भाई यहाँ रुक जाओ बस। और आदमी ऐसा होना चाहिए मोमिन के मैग्नेट की तरह उसके दिल की सुई अल्लाह की तरफ हो, किधर भी उसको तरोड़ लें मरोड़ लें, दफ्तर में है, बाजार में है, कहीं भी किसी जगह पहुंच गया, लेकिन उसको ख्याल है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे मुसलमान की तरह से रहना है, तो वो मैग्नेट की तरह उसका दिल अल्लाह की तरफ जुड़ा हुआ है। तो दिन में ऐसा बार बार ख्याल आएगा, बार बार मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। तो अब ये इस तरह दिन गुजरा, रात में आके अपना हिसाब लिया, रात में आके क्या हिसाब लिया कि भाई मैंने कितने काम ठीक किए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्म लक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, मेरा जो है आज कोई ज़बान से कोई गलती नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने बिल्कुल जो है आँख से भी कोई नहीं बहकी आँख मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, आज किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्म लक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। किसी चीज़ में गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, तो अब इस्तग़फ़ार करे आगे, इस्तग़फ़ार, तौबा, या अल्लाह माफ़ कर दीजिए गलती हो गई, आइंदा नहीं करूँगा, अब गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगे। फिर जो है कहे कि भाई ए नफ्स, मैंने तुझसे वादा किया था कि अगर तू गड़बड़ करेगा तो तुझे सजा दूंगा, अब मौका आ गया उसका, तो अगर जो है कोई गलती की तो उसको जो है छोटी सी कोई ऐसी सजा दे जो इतनी मामूली ना हो कि नफ्स जो है वो इसको इग्नोर कर दे। एक दफ़ा हज़रत ने वाक़या बयान किया कि हिंदुस्तान में जो है वो एक कॉलेज बना और उसमें शौक में सब पे तालिब इल्मों पे स्टूडेंट्स में रखा गया कि सब लोग 5 वक्त की नमाज आके मस्जिद में पढ़ेंगे, बोर्डिंग में रहते थे, तो जो नहीं पढ़ेगा उसको इतना इतना जुर्माना देना पड़ेगा, फीस फाइन पर नमाज। तो वो इतना फाइन इतना कम था कि लोग आगे अमीरों के बच्चे पूरे साल का फाइन एक साथ ही रसीद जमा कराते थे कि ये लीजिए। तो कहते हैं कि जुर्माना ऐसा नहीं हो कि कोई बहुत आसान हो, बस सब सब उसको बेफिक्री से ले लें। तो भाई जैसे कोई जमात की नमाज सुबह छूट गई, कोई चीज़ नहीं उठ पाया सुबह, तो अपने नफ्स पे कोई रखे कि भाई अब तुम्हें 8 रिकतें नफिल की पढ़नी पड़ेंगी इशराक के बाद या रात में, तो नफ्स जब देखेगा कि भाई वो तो 4 ही रिकत थी, अब ये 8 पढ़नी पड़ रही है, अगले दिन उठ जाएगा। तो ये अपने आप की ट्रेनिंग का एक नुस्खा है। बदनजरी की, किसी गैर महरम पे नजर डाली जहाँ पर जो है नहीं देखना चाहिए था, देख लिया, तो अब जो है आप कुछ खैरात करो, $10-20 खैरात करो, 8-10 रिकतें पढ़ो, ताकि नफ्स ट्रेन हो कि अगली दफ़ा नहीं करूँगा, ये तो मैं मुश्किल में फंस गया, आप जो है 8 रिकत इसकी पढ़ो, 8 उसकी, पूरा आधा घंटा रात में जो है मैं इस काम में लग गया। इस पर मुस्तकिल अमल करना होगा। तो 2-3 दिन में, हफ्ते 2 हफ्ते जो शैतान के साथ कुश्ती है और नफ्स के साथ, तो आहिस्ते आहिस्ते आदमी का मिजाज बन जाएगा कि अरे मैं जो है फलां फलां काम ठीक नहीं करता। फिर जो है हजरत फरमाते हैं कि नफ्स की तावीलात का इलाज करो। अब फ़र्ज़ करो कि क़यामत में आप खड़े हैं और पूछ हो रही है, जो होगी पूछ, अल्लाह ताला महफूज रखे, आसानी साहब अता फरमाए। फ़र्ज़ कीजिए, मशायख फरमाते हैं, उनका मजमून है, कहते हैं कि भाई क़यामत में पूछ हो रही है कि फ़लाँ काम क्यों किया, तो जवाब दे देना अल्लाह मियाँ को वही जवाब जो दुनिया में मौलवियों को देते हो, वही जवाब दे देना वहाँ पे भी कि भाई क्या करें, ज़माना ख़राब था, और भाई क्या करें, सांस भी नहीं लेने दोगे क्या, और भाई सब लोग कर रहे थे हमने भी किया, और वो है भाई दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आप अभी पुराने ख्यालात में हो, तो वहाँ अल्लाह मियाँ के यहाँ वही जवाब दे देना जो दुनिया में मौलवियों को देते हो, तो बताओ कि वो जवाब चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आदमी फंस जाएगा वहाँ। अब उसमें हजरत फरमाते हैं कि भाई ये तरबियत का नुस्खा है कि भाई वहाँ जो है अगर पूछ लिया जाए मिसाल के तौर पर कि ये बताओ कि तुम मजबूर थे कि मैं मजबूर था, तो बोलेंगे अल्लाह मियाँ मैं मजबूर था, आप तो मजबूर नहीं थे। तो वहाँ अगर ये कह दिया जाए कि भाई पूरा कुरान शरीफ भरा पड़ा है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर कितनी दफ़ा आया कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, तो बताओ कि जब मुश्किल में फंस गए थे, फितने में किसी गुनाह का मौका, तो हमको क्यों नहीं पुकारा, हम ठीक कर देते, हम हर वक्त मौजूद थे, देख रहे थे, तुम्हें जान रहे थे, तुम हमसे क्यों गाफिल हुए, हमको क्यों नहीं पुकारा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जो है वो फर्श गए और सारे दरवाजे बंद थे, ताले थे, उनको कहा गया भाई आ जाओ गुनाह की तरफ, मुझे देखा सारे ताले बंद हैं, बज़ाहिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भागे दरवाजे की तरफ, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने सारे ताले खोल के बाहर निकाल दिया, दरवाजे तक पहुंच गया, तो भाई हमको क्यों नहीं पुकारा। तो ये जो है ना नफ्स को बहला बहला के उसको ट्रेन करके अल्लाह की तरफ लेकर के आना है। तो मशायख से जो ताल्लुक़ होता है बुज़ुर्गों से, वो सिर्फ यानी वजीफे जिक्र और दुआ के लिए नहीं होता कि जी दुआ कर दीजिए, बल्कि इन चीज़ों की इसलाह कराने के लिए, दिल की बीमारियाँ ठीक करें, बुरे अखलाक रज़ाइल का इलाज कराए, कहीं मुझ में हसद तो नहीं, कहीं मुझ में फ़ख्र व गुरूर तो नहीं, कहीं नामो नमूद तो नहीं, शो ऑफ तो नहीं, बदनजरी गिबत तो नहीं, कैसे मेरी इसलाह हो, ताकि ये जो पढ़ा गया कि फरिश्तों का इकराम और अल्लाह की मोहब्बत और ये सब चीज़ें मुझको हासिल हों। तो उसमें ये बात समझ लें कि वो हर कोई नमाज़ पढ़ाने वाला या मस्जिद में बयान करने वाला शेख नहीं होता, बल्कि वो अहलुल्लाह होते हैं, बुजुर्गान और बड़े उनकी जो है उनकी यानी इजाज़त होती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, और जो है वो उनको जो है उम्मत की इसलाह के काम और इस तरह की चीज़ें उनके सुपुर्द होती हैं। अब जिसको मिल जाए बहुत गनीमत है, जिनको नहीं मिल रहे तो अपने जो है फतवे की चीज़ें उलमाए कराम से पूछ ले, बुज़ुर्गों की किताबों से इसलाह ले ले, उन इस्तखारे से चले, मशवरे से चले, लेकिन यह कि इसलाह करनी बहुत ज़रूरी, इसलाह करनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। भाई ये जो है तकरीबन सबक हो गया है। अब आखिर में जो है एक चीज़ उनके लिए पढ़ी जाती है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए कि भाई मुझसे अमल नहीं हो पा रहा और मैं नेक अमल कहाँ से करूँ और जो है अल्लाह के पास यानी इतने सारे अमाल कहाँ से लाऊं, तो उससे बचने के लिए किताबें लिखी गई हैं कि अल्लाह ताला बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला कैसी छोटी छोटी चीज़ों पर मग़फ़रत कर देते हैं। तो ये हम लोग आखिर में मोटिवेशन के लिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है शौक़ अता फरमा दे। अल्लाह फरमाते हैं कि हम अपने करीम मालिक और परवरदिगार की बेशुमार इनायतों को देखें और अपने गुनाहों का जायज़ा लें तो नदामत से सर झुक जाना चाहिए। तो ये उनका करम है कि सत्तारी की चादर हमारे ऐबों को छुपाए हुए हैं। अगर हमारी यानी वो चादर हटा दी और लोगों को हमारी यानी गलतियाँ मालूम हो गई तो मखलूक कहीं पत्थर लेके ना दौड़ा, यानी अल्लाह ने हमारे ऊपर पर्दा डाला हुआ है, तो कितना जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अगर हम किसी आदमी को कोई काम कहें, एक दफा, दो दफा, तीन दफा कहें, उसके बावजूद हमारी बात पर कान ना धरे, तो कितना गुस्सा आता है। अगर कोई बच्चा हो तो पिटाई कर देते हैं, अगर घर वाले हो तो नाराज हो जाते हैं, मुलाजिम हो तो नौकरी से निकाल देते हैं, वो एक दफा कहा था, दो दफा, तीन दफा, बस अब गुंजाइश नहीं। हमारा ये हौसला है कि दो चार दफा कहने के बाद हमारे गुस्से की इंतहा हो जाती है, लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह पर के बावजूद हमारी साल हर साल की नाफरमानी के हमारे ऐबों को छुपा कर हमें खिलाता पिलाता है, हमारी सुनता भी है। ऐसे रहीम मालिक से ताल्लुक न जोड़ना और उसकी मोहब्बत को दिल में न बसाना, ये अपनी ही नादानी, अपना नुकसान है। हिंदुस्तान के एक बुत परस्त का वाकया, ये जो है हिंदुस्तान के बुत परस्त का वाकया, और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह लिखा है, जिन्होंने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी और उस सदी के मुजद्दिद कहलाते हैं पूरी, यानी कॉन्टिनेंट में उनके काम और उसकी पब्लिकेशन ऐसी हैं कि आज भी लोग, यानी कोई PhD का डिजर्टेशन लिखता है कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के मलफूजात और उनके ख्याल, उस पर लोग PhD की डिग्री लेते हैं आजकल। उन्होंने जो है ये मजमून बयान किया है कि जब अल्लाह के दरियाए रहमत में जोश आता है तो 100 बरस का काफिर सेकंडों में फख्र औलिया वलीउल्लाह बन जाता है। हिंदुस्तान में एक काफिर अपने बुत के सामने, एक काफिर बुत के सामने 90 साल से कह रहा था सनम सनम, जो होता है उनके उसमें, यानी 90 साल से वो पूजा कर रहा था, सनम सनम कह रहा था। एक दिन गलती से उसके मुंह से तलफुज बदल गया, उसके मुंह से समद निकल गया। समद अल्लाह का नाम है, उसकी तफसीर जो है वो ये है कि समद वो ज़ात है जो सारे आलम से बेनियाज हो, किसी के मोहताज ना हो, सारा आलम उसका मोहताज हो। बस उसके मुंह से समद निकलना था कि अल्लाह ने फरमाया कि लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूँ मेरे बंदे। उस काफिर ने उसी वक्त बुत को डंडे मार मार कर तोड़ दिया और कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने जो है लोगों से कहा कि जालिमो, 90 साल तक बुत को पुकारा, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। आज गलती से मुसलमानों के खुदा का नाम मुंह से निकल गया तो आसमान से जवाब आया, गलती से निकल गया मुसलमानों के खुदा का नाम। तो जो है फौरन आवाज आ गई कि मेरे बंदे, मैं हाजिर हूँ, तू मुझको छोड़ के पत्थरों को पुकार रहा है जो औंधे अंधे गोंगे और बहरे हैं। तो एक मजलिस में हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने इस वाक़े को बयान करके फरमाया कि साहिबो, जब एक बुत परस्त के भूल से याद करने पर इतनी तवज्जो होती है, तो क्या आपका ख्याल है कि अल्लाह ताला मुसलमानों पर मुतवज्जो ना होंगे? अगर वो अल्लाह को राज़ी करना चाहें तो ज़रूर मुतवज्जो होंगे। तो आप जो है अल्लाह को राज़ी करने का कसद कर लें, अल्लाह को राज़ी करना है हमें, इसलिए जो है हम बैठे हैं। तो भाई हम जो है अल्लाह से दुआ करेंगे, और जो है उससे पहले दुआ की कुछ चीज़ें, ये सब शौक़ के बारे में है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और जो है हर तरह के फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। तो भाइयों बहनों, जो बातें हमने अमल के लिए सुनी हैं, उनकी नियत करके एक एक को ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। अपने अपने इलाके में अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन हो तो उनसे राबता करके अपनी इसलाह कराइए, अपनी तौबा की तकमील कीजिए। घरों में रोज़ाना 5-10 मिनट फ़ज़ाइल की तालीम, ज़िक्र का अहतमाम कीजिए और दुआ का वक्त बढ़ा दीजिए। सवालात पूछने हो किसी को तो कुछ उसकी वेबसाइट्स हैं, उसकी मिसाल के तौर पे इस्लाम इजी साइट है, वहाँ जाके उसमें इंतज़ाम है, अलहदा से ख़वातीन अलहदा सवाल पूछ सकती हैं, तो एक आलमा बाजी जवाब देती हैं। इंग्लिश में मुख्तसर किसी को मजमून चाहिए इस तरह के, तो वो भी जो है वो वेबसाइट से मिसाल के तौर पे इस्लाम इजी वगैरह से ले सकते हैं। अगले हफ्ते का हलका 8:15 पे सियाटल टाइम के हिसाब से 8:15 पर होगा। आइंदा संडे 8:15 पर अगले हफ्ते का हलका होगा। जो अच्छी बातें हमने सुनी हैं उनको घर में और दोस्तों में दोहराइए, तकरार से याद रहेगा। इतनों के ज़माने में जो आदमी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसको 100 शहीद का सवाब मिलेगा। और जो है जिस ज़माने में दीन अजनबी हो गया, जैसे कि हाथ में अंगारा, तो फिर जो है जो आदमी पूरे दीन पर अमल कर लेगा तो फरमाते हैं उसको 50 का सवाब मिलेगा। 50 आजकल के लोग नहीं, बल्कि 50 सहाबा के ज़माने के लोग। हज़रत की ज़बान से हमने खुद सुना कि 50 अबू बकर और उमर का सवाब मिलेगा। लूट मची हुई है, लूट लो जितना लेना है। लोग कहते हैं हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते, कह रहे हैं भाई उसमें क्या होते, हम लोग अदब का नहीं ख्याल कर सकते थे, हमारे लिए अभी होना ठीक है, लेकिन लूट मची हुई है सवाब की, आप 50 वैसा सवाब ले लो आज। तो दीन पे जो है ना अमल करना चाहिए, सवाब की लूट है। ये मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह उनका मजमून है, ये सवाब की लूट है। अल्लाह सुबहान व तआला हमें जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी सी मुख्तसर दुआ हो जाएगी, जिनको जो है नमाज को जाना हो पहले भी जा सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग सब उसमें चलेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلي وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يا الله آپ کے نزدیک ہر پوشیدہ ظاہر ہے، دنیا کے سارے اسباب آپ کے سامنے مسخر ہیں، سارے مخلوق کے دل آپ کے سامنے مسخر ہیں. یا اللہ آپ کے ایک اشارے میں ساری دنیا کی پیداوار ہے. یا اللہ آپ کا شکر ہے تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر. یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ سب دیکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ہماری ہر بات سنتے ہیں. اللہ آپ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، مغفرت کے خزانے، صحت کے خزانے، چین سکون کے خزانے، عزت کے خزانے، مال اولاد کے خزانے، علم کے خزانے، اچھی صفات کے خزانے. یا اللہ ہمیں ہر بھلائی عطا فرما، ہر برائی سے بچا دیجئے. اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے گناہ صغیرہ کبیرہ سب معاف فرما دیجئے. یا اللہ غلطیوں پہ پردہ ڈال دیجئے. یا اللہ نیک عمل کی توفیق دیجئے. یا اللہ ہر وقت کا ذکر، شکر، اچھی نیتیں، دعا، نیکیوں کا پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائیے. یا اللہ گھروں کے جھگڑے ختم فرمائیے. یا اللہ آپس میں پیار، محبت، اطمینان. یا اللہ آئندہ حیات طیبہ عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان الله.